ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
तो हम चर्चा करेंगे ओम ज्ञाति मिरांदर्शक नानंजन शलाक्य चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेतवेद गदाधर श्रीवासव प्रभु
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हम श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक लेंगे जो हमने कुछ समय पहले लिया था। बीच में हमने भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में बताया था आपको, और हम एक श्लोक लेंगे आपके साथ और फिर उसके ऊपर से आगे चर्चा करेंगे। दो श्लोक भागवतम श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 24वां अध्याय जो कि गोवर्धन जी का लीला चल रहा है और श्लोक नंबर 10 तच्छे श्रेणो पजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकारणाम परजन्य फल भावना। इसका अर्थ यह है कि इसका कॉपी रखो ना दसम स्कंद का और 11वां श्लोक है। यैनं विस्विदित धर्मं परं पर्यागतं नर कामाद् द्वेषाद् भयात् लोभात् सवै नाप्नोति शोभनम्। तो ये दो श्लोक हम पढ़ेंगे उसके बाद 10 और 11 24 हिंदी में पढ़ना।
हिंदी नहीं
ना होई इसमें से
24
हाँ
क्या तो 4 माना दी 24
सेकंड पार्ट ठीक है। मैं हिंदी इसमें से बोल
देंगे उसके बाद
बाजू वाला
हिंदी में पढ़ना
24.10
4.10-11
इंद्र यज्ञ करने के बाद बाकी रहा हुआ पदार्थों से सर्व मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम की सिद्धि के लिए आजीविका करते हैं। इस रीत से इंद्रदेव पुरुषार्थ करने वाले उद्यमी लोगों के फल साधक प्रतिनिधि है।
11
ये धर्म सुदृढ़ परंपरा पर आधारित है। जो कोई मनुष्य काम द्वेष भय या लोभ से उसका त्याग करेंगे उसका कल्याण उसी का कल्याण हो सकता है तेनु कल्याण थी सके।
सो अंत में क्या कहा ये नंद कह रहे नंद महाराज कह रहे ये चीज। तो नंद महाराज का 11वां श्लोक का क्या ट्रांसलेशन था कि जो इस धार्मिक सिद्धांतों की जो शब्द जो परंपरा से चल रहे हैं उस पर ये धार्मिक सिद्धांत आधारित है। जो व्यक्ति काम शत्रुता भय या लोभ के वश इसका त्याग करता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। सो धर्म की स्थापना भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए की है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं अगर हम किसी का बुरा सोचते नहीं किसी का बुरा करते नहीं झूठ नहीं बोलते किसी पर किसी को धोखा नहीं देते, किसी को हिंसा नहीं करते, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? मैं उन जो ढोंगी साधुओं से तो कहीं अच्छा सज्जन हूँ, है ना? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग धर्म का नाम लेते हैं और धर्मध्वजी होते हैं। धर्मध्वजी का अर्थ क्या होता है कि जो लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस धार्मिक सिद्धांतों की बात हो रही है, हालांकि ये नंद महाराज कह रहे हैं, लेकिन नंद महाराज तर्क जो कर रहे हैं एकदम सही है। इंद्र पूजा करना नहीं करना ये दूसरी बात है। नंद महाराज तो इंद्र की पूजा के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन इंद्र पूजा करना भक्तों के लिए उचित नहीं है ये दूसरी बात है। ये सच है, क्योंकि भगवान के भक्तों को किसी देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कल एक भक्त एक लड़का मुझे पूछे कि प्रभु जी कात्यायनी देवी कौन है? मैंने कहा दुर्गा देवी है। बोले गोपियों ने उनका व्रत किया था। तो मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग देवी देवताओं के पास तो जा ही सकते हैं ना कृष्ण का वो प्राप्त करने के लिए। अच्छा, देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए आप कृष्ण के पास देवी देवताओं के पास जाओगे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए? हाँ। फिर मैंने उनको कहा कि उसमें एक समस्या है। मतलब क्या समस्या है? मैंने कहा कि ये संभव है कि आप भौतिक आकर्षणों से आकर्षित हो जाओगे। देवी देवताओं के पास जनरली कौन लोग जाते हैं? जिसको काम जिसको ढेर सारी कामनाएं है ना। आप सोचिए, ऐसे तो हर एक व्यक्ति में कामनाओं का कोई शेष है क्या? कामनाएं कितनी हैं, कितनी सारी कामनाएं होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने से उसकी कामनाएं शुरू हो जाती है। मुझे इतना चाहिए, मुझे वो चाहिए। और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में ही तो लगा है, यही करता है ना जनरली। करता क्या है, लोग करते क्या है? अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, यही कर। हालांकि उनकी इच्छा कभी पूरी हो पा होती नहीं है ना। वो ट्राई करते लेकिन हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी प्रयास यही करते। बिना इच्छा का कोई मनुष्य होता है क्या? कोई इंसान बिना इच्छा के जीवित रह सकता है? ना, आज मेरा कोई यू नो मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है आपसे लड़ने, नहीं रहेगा, ये लंबा समय नहीं रहता। इच्छा, जैसे भगवान कहते हैं कि कर्म बिना मनुष्य नहीं रह सकता, इस तरह से इच्छा बिना मनुष्य रह नहीं सकता। और इच्छाओं की श्रेणियां अनेक है ना। इच्छा किस कैसी कैसी इच्छाएं होती है? सबसे ज्यादा इच्छा क्या होती है? प्रतिष्ठा की, अहंकार की। मेरा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, लोग मुझे सलाम भरे, सब मुझे सब लोग मेरा नाम दे, सब जगह मेरा ही यश हो, मैं मुझे भी कुछ लोग देखे, फेमस हो। दूसरी कैसी इच्छाएं होती है? इंद्रिय भोग की। अच्छा खाना दो, अच्छा सोना दो, आहार निंद्रा भय मैथुन एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का होना चाहिए, ये इच्छा होती है। ये सारी इच्छाएं जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे तब भी थी, और भक्ति के बाद भी ये इच्छाएं जब तक हम शुद्ध नहीं रहे होंगे पूरी तरह से, तब तक ये इच्छाएं रहेगी। और इस इच्छाओं के कारण कई बार कहते हैं ना अपने प्रभु जी भक्त ऐसा हो, भक्तों के वो उसका मन ठीक नहीं है, वो ऐसा करता है ऐसा, क्योंकि उसकी भौतिक वृत्ति आजकल की नहीं है। हम सबका जो भौतिक वृत्ति है ना, टेंडेंसी, वो कई जन्मों की है। कई जन्मों से हमारे हृदय में कचरा भरा पड़ा है भगवान को भूल करके, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें बार बार भक्तों की संगत में क्यों जाना पड़ता है? आप खुद ही देख लो, अगर आप 10 दिन 20 दिन भक्तों की संगत से दूर हो जाओ, आपको कैसा फील होगा? सफोकेटिंग होगा, कि ये क्या क्या जीवन है, क्या लाइफ है। मैं गया था 1 महीने की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, पिछले लास्ट वीक ऐसा हो रहा था कि कब भक्तों की संगति में वापस जाए. इट मे यू मे कॉल इट होम सिकनेस बट इट एक्चुअली इट्स नॉट होम सिकनेस. इट्स अगर भक्तों का संगति मिल रहा हो तो आपको, जैसे वृंदावन धाम में आप एक महीना रहते हो तो आपको होम सिकनेस होती है. ब्रजमंडल में हुआ था, बोले कब घर जाऊंगा कब घर जाऊंगा, ऐसा हुआ था. कहाँ घर जाने को हुआ अब, है ना, ऐसी सिचुएशन हो जाती है. वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में आप जाते हो तो आपको, क्योंकि वहां पर आपको संग प्राप्त हो रहा है, भक्तों का, वैष्णव का संग प्राप्त हो रहा है. वैष्णव बोला, वैष्णव संगति के लिए ही हमें प्रयास करना. जैसे आप वैष्णव संगति से दूर हो जाओगे, जैसे आप दूर हो जाओगे वैष्णव संगति से, तो परिणाम क्या आएगा, क्या आएगा परिणाम,
पता नहीं हो जाएगा,
सब कुछ नष्ट हो जाएगा. इसलिए वैष्णव से कभी दूर नहीं होना, कभी कितना भी हो जाए. ऐसे समझ लो कि अगर ऐसे, अगर किसी एक वैष्णव से अगर आप नहीं मिलना चाहते तो दूसरे वैष्णव के पास जाओ, लेकिन वैष्णव से दूर मत जाओ. डोंट गो अवे, तुरंत नष्ट, माया तुरंत पकड़ लेगी. हाँ, माया सोचेगी यस दिस इज द राइट टाइम, ये राइट समय है कि उसको अटैक करो. उसी समय अटैक करेगी माया. सो हमें संगति से दूर नहीं होना है. और जैसे जैसे हम इस संगति में रहेंगे, वैसे ये वृत्ति जो है ना, टेंडेंसी इतने सालों की, वो टेंडेंसी से हम शुद्ध हो जाएंगे. आदत, आदत आदत होती है किसी ना, कुछ लोग की आदत होती है, कैसी कैसी आदतें होती है, आदतों की भी अनेक श्रेणियाँ हैं. लेकिन कुछ आदत अच्छी होती है और कुछ आदत अच्छी नहीं होती है ना. हम लोग हॉस्टल्स में कई बार ये लेक्चर देते हैं, कॉलेजेस में, पावर ऑफ हैबिट्स, आदतों की शक्ति कितनी है. लेकिन ये आदतें जो होती है वो, अगर वो भगवान की सेवा में बाधा रूप होती है तो उस आदत से हमें धीरे धीरे निकलना चाहिए बाहर. जैसे हमें क्या सिखाया गया है चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में, शिक्षा अष्टकम के तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है, क्या अर्थ है उसका, ये कंप्लीटली ऑपोजिट स्ट्रीम है. तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, और हमारा बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है. तृणादपि सुनिचेना, हम दूसरे सबको देखते हैं कि बाकी मेरे सिवा जितने भी लोग हैं घास के तिनके के समान है. मुझे छोड़ के सारे घास के तिनके समान है. और तरोरपि सहिष्णुना में क्या सोचते हैं कि सबको वृक्ष के जैसा होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं कुछ बोलना नहीं चाहिए. हमारा कंप्लीट ऑपोजिट है. लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि पतित मौसम पतित प्रभु, ये गाने में बड़ा अच्छा लगता है, मौसम पतित प्रभु, हे प्रभु मुझसे अधिक पतित कोई है ही नहीं संसार में, बस आप अपने घर में अपने घर, यू डू योर वर्क आई डू माई वर्क, मुझसे पतित कोई है नहीं. लेकिन वो बोलने से कुछ होता है क्या, हमें एक्चुअली फील करना होता है. अभी अभी कुछ समय पहले मैं लेक्चर सुन रहा था कि हमें आश्रय लेना चाहिए भगवान का. एक बड़े प्रसिद्ध सन्यासी रोमपाद स्वामी, वो कह रहे थे कि जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है वो दुष्ट है, ऐसा बता रहे थे. तो फिर उन्होंने इसके वाक्य क्या, कैसे, क्योंकि जो भगवान का आश्रय लेगा किसका आश्रय लेगा, माया का आश्रय लेगा, है ना. और माया का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है. कौन कौन आपको खाना पीना हवा पानी कौन देता है, भगवान देते हैं माया देती है, भगवान देते हैं ना, है ना. अगर आप बीमार हो आप दुखी हो तो आपकी सबसे सबसे पहली चिंता आपकी किसको होती है, भगवान को होती है ना, ना प्रभु, हाँ तो मेरा फ्रेंड है मेरी पत्नी है वो सब लोग, कौन चिंता करते हैं, एक्चुअली चिंता कौन करते हैं, भगवान करते हैं। सबसे पहली चिंता भगवान को होती है। तो भगवान इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना यू नो जीवों का इतना देखभाल करते हैं, तो उनकी शरणागत जो व्यक्ति नहीं होता वो क्या करेगा, माया का शरणागत होगा। एक भाई मुझे कल मिले थे, इतना सब प्रभु प्राप्त होता है, मैं बहुत इतना साल भक्ति किया, क्या मिला, ना अच्छी नौकरी मिली, ना अच्छी छोकरी मिली, ना ये हुआ, ना क्या, ये क्या लाइफ है, क्या ये परिणाम है, भगवान ये परिणाम देते हैं मुझे, कुछ नहीं देते भगवान मुझे। तो सबसे पहले तो मैंने उनको कहा, क्या भगवान तुम्हारे ऑर्डर सप्लायर है, तुम ऑर्डर करते जाओ और भगवान देते जाए, नहीं। मैंने कहा कि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, इसको आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते, बोले हाँ करता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, भगवान की इच्छा पर आधारित रहो, भगवान जो इच्छा करते हैं उस पर आधारित रहो, भगवान की इच्छा के सामने रिबेल तिरस्कार मत करो, या भगवान की इच्छा का उनके सामने चैलेंज मत करो, डोंट रिबेल। सो जो व्यक्ति भगवान की इच्छा से समर्पित होता है, भगवान की इच्छा को मानता है, स्वीकार करता है, और देखिए ये बात याद रखिएगा कि कसौटी आपकी, जब तक शरीर त्याग नहीं करोगे तब तक आपकी कसौटी होगी। जब आप भगवत धाम जाओगे ना तो स्वयं माया आपके पास आएगी, दुर्गा देवी स्वयं आएगी आपके पास, आपको कहेंगे ही क्या बुराई है इस स्थान में रहने की, मैं तुम्हारी इतना देखभाल तो करती हूँ, सारी सेवा सब कुछ तो सही है, तुम चाहो तो तुम्हें प्रमोशन मिल दो, कहाँ प्रमोशन, जैसे आप कोई कंपनी छोड़ते हो तो क्या करते हैं बॉस, है ना, आपको ऑफर्स देते हैं ना कि आप ये कर लो, चाहो तो ये कर लो, ये आपकी पगार, आपका इतना सैलरी इतना कर देंगे, आपको जो चाहिए सुविधा दे देंगे, यू नो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो माया भी ट्राई कर दिया ऐसा, तुम चाहो तो स्वर्ग में रह लो कुछ साल, तुम चाहो तो यू नो सिद्ध लोक में चले जाओ, क्या चाहिए घर, पृथ्वी पर रहने के लिए आपको मर्सिडीज चाहिए, कोई अच्छा घर चाहिए, आपको जो चाहिए दे दूंगा, दे दूंगी, यू नो, लेकिन क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमें बड़ा दुख होगा, मत जाओ भगवत धाम। तो जो जो यू नो जिसमें थोड़ा सा भी कच्चा है ना वो, हाँ यार बात तो इनकी सही है, क्या गलत है, सब कुछ तो सही है, और फिर आ जाता है माया की झपट में, फंस गया, नहीं जाएगा भगवत धाम। तो इसलिए हमें हमें भगवान की शरणागत अनन्य भाव से होना चाहिए, वेरी स्ट्रिक्ट शरणागत, भगवान के सिवा और कोई मेरा हितैषी नहीं है। तो ये भाव से हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवान की शरणागत होना त्याग करता है, काम से, शत्रुता से, भय से या लोभ से, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। यहाँ पर धर्म सिद्धांतों का वर्णन बताया है कि जो धर्म के सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे धर्मों का अंतिम धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो वो कल भाई साहब जो मुझे मिले थे, मुझे बोले इतना सब किया, भगवान ने मेरे लिए क्या किया। मैंने कहा भगवान ने भगवद गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या तुमने इसका पालन किया। भगवान ने कहा बन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो मुझ में मन लगाओ, क्या तुमने इसका पालन किया। भगवान तुम्हारी हर बात सुने और तुम उनकी एक भी बात ना सुनो, नहीं भगवान और मेरा बात सुनते नहीं। तो इसलिए हमें अनन्य भाव से भगवान की शरणागत होना चाहिए। हमारे भक्ति में भी हम देख सकते हैं कि भक्ति में भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, हम भक्ति में भी कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको मिश्र भक्ति बोलते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं बोलते। कंडीशन अप्लाई करते, अगर ये कंडीशन होगी तो मैं भक्ति करूँगा, ये कंडीशन होगी तो मैं माला करूँगा, ये कंडीशन होगी तो मैं सेवा करूँगा, जैसे अभी कुछ समय पहले किसी से बात कर, मुझे 5 बजे गाने का यू नो स्लॉट दोगे तभी मैं गाऊँ, यू नो फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप ये सेवा दोगे तो मैं सेवा करूँगा, बाकी आप करो अपने आप. तो कंडीशन अप्लाई यू नो हर एक वस्तु में, ये नहीं कि हम दूसरे का देख रहे. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, अपने आप से करनी चाहिए ना, कि हम कंडीशन देखते हैं कि नहीं, हम भी ऐसा कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन होगी तो ही मैं भक्ति करूँगा सेवा करूँगा. तो ये तो बहुत बाधा रूप है शुद्ध भक्ति में. हमें केवल ये देखना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है या हमारे ईगो की सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, हमारे ईगो की सेवा करनी है. हमें ये चेक करना चाहिए. भगवान कितना प्रेम देते हैं आप जानते हो. अभी अभी आपने दो एक भक्त ने मुझे सजेस्ट किया, अभी सनातन प्रभु ने, कि गजेंद्र मोक्ष गए, गजेंद्र मोक्ष गया था थोड़ी देर पहले. तो गजेंद्र मोक्ष में क्या आपने सुना, क्या सुना, कुछ पता है? हाँ
तो जीवन
है. हाँ फिर उसमें क्या सूरदास जी क्या कहते हैं? हाँ वो सूरदास जी कहते हैं कि एक बार गया था नीर पीने, नीर पीवन हेतु करो. एक बार वो गए थे गजराज हाथी, राजा था हाथियों का, पानी पीने के लिए, और वहां पर मगर ने पकड़ लिया, और मगर पानी में खींचता ले गया तो डूबने लगा हाथी, और हाथी की शक्ति पानी में कम हो जाती है ना, मगर की शक्ति बढ़ जाती है. तो मगर के साथ हाथी का बड़ा युद्ध हुआ. ये हम कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं बता रहे, ये श्रीमद् भागवतम का इतिहास है. तो भगवत भगवान ये हाथी और मगर के बीच में बड़ा युद्ध हुआ और कई महीनों तक चला, कई दिनों तक ये युद्ध चला. और धीरे 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 हाथी जो है वो मरने की लास्ट कमजोर हो गया, मरने की अवस्था पे पहुंच गया. तो उसने भगवान की शरण ली. देखिए भगवान कितने इजीली शरण होते, एक्सेप्ट स्वीकार करते. क्या क्या उन्होंने?
कमल,
हाँ बस आसपास में कहीं देखा कमल का फूल है, उठा करके सीधा भगवान को अर्पण किया सीधा. सोचिए है ना, ऐसा नहीं सोचा कि नहीं प्रभु जी कोई दीक्षा विक्षा तो लिया नहीं है, मैं सोचा कैसे भगवान को अर्पण करूंगा या फिर फिर मैं क्या करूंगा अभी कोई अभी, हाँ अभी मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अभी क्या करे, अभी मेरी पत्नियाँ क्या सोच रही होगी मेरे मुझे देख के, मैं फंसा हुआ हूँ इस मगर के चुंगल में, ऐसा सब नहीं सोचा उन्होंने हाथी ने, या फिर मैं आचमन कर लूँ कम से कम, है ना कमल का पुष्प देना है एकदम पुष्पम करके, ऐसा करके ऐसा कुछ नहीं सोचा कमल हाथी, ये भी कुछ नहीं सोचा, 10 दिन से आया नहीं है कुछ नहीं. इसका अर्थ क्या होता है कि आचमन नहीं किया कुछ नहीं, मैं तुझे ऐसे बता रहा था कि अलग अलग, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? शरण होते है ना, भगवान की शरणागत हुए हाथी. तो इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई इसमें? आचमन इम्पोर्टेंट हुआ, स्नान करना इम्पोर्टेंट हुआ, क्या इम्पोर्टेंट हुआ? साधन भक्ति इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल लाइक अस, इट इज ऑलवेज देयर, बट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वाज प्रोमिनेंट?
फेथ एंड सरेंडर.
और ये कितने कोई मीडिया वाले आए थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मायापुर टीवी पर कि ये हाथी के बीच में युद्ध हो रहा है, किसको पता था ये? ऐसा कुछ था क्या? सब लोग ऑडियंस आके इकट्ठे हो गई थी, कोई गेम चल रहा है दोनों के बीच में, ऐसा कुछ था नहीं. तो क्या था भाव? क्या था? शरणागति. और वो हाथी जो गजराज जी थे उनके हृदय की जो सबसे हृदय के एकदम हाउ यू से फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय की गहराई से वो शरणागति थी. एक्चुअली दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, वो हमें चाहिए। ये अच्छा है कि अगर हम नियमों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति शरणागत का भाव नहीं है, जब हम भगवान को हमारा स्वामी नहीं मानते, जब तक हम भगवान की बात को गंभीरता से नहीं लेते, जब तक हम भक्ति के विधि विधानों का केवल ऊपर से ही पालन करते, हृदय में जब चैंटिंग करते तो जब करते केवल गिनने के लिए कितनी माला हुई, 16 माला बोला है ना, तो काउंट तो करना पड़ेगा कितनी माला किया, तो हम 16 माला जब करते हैं केवल गिनने के लिए, क्या कर रहे हैं, माला गिन रहा हूँ। साधारण रूप से अगर आप हम लोग भक्तों की बात नहीं, लेकिन अगर आप बाहर किसी को पूछोगे ना, बोले क्या कर रहे हो, बोले माला गिन रहा हूँ, माला गिन रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है,
बोलेगा कर रहा हूँ।
हाँ, अब देखा उनका कितना फास्ट होता है। तो माला का जप करते समय क्या भाव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष के समय आप देखो कितना 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 प्रेम से गजेंद्र भगवान को फूल अर्पण किया। अब सोचिए कि अर्पण करते करने के साथ भगवान विवश हो गए, भगवान को आना पड़ा, विवश हो गए। सोचिए प्रभु जी, ऐसी भक्ति तो हमारे हृदय में कहाँ आएगी, वो आएगी जैसे आप माला का जप करोगे, प्रयास करोगे तो आएगा, है ना। अगर आप किसी ऐसे समझ लो कि लकड़ा अगर थोड़ा सा जला हुआ है तो उसको हवा दोगे तो क्या होगा, और हवा दोगे तो क्या होगा, और उसको और तेजी से हवा देते ही रहोगे तो क्या हो जाएगा परिणाम, आग निकल आएगी, है ना, आग निकल आएगी उसमें से। तो अभी किसी ने हमें थोड़ा सा टच कर दिया है कि ये थोड़ा सा है अग्नि, लेकिन उसको हवा देना पड़ेगा। ये हवा जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, 16 माला का जप, जितना अच्छा हवा देते रहोगे, जितना अच्छा श्रवण कीर्तन होता जाएगा, जितना अच्छा तेजी से और अच्छा क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्रकट हो सकता है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कि हम हवा देने में ही कंजूसाई करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, माला का जब भी इम्पोर्टेंट है, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है इसके अलावा भी जिसको हमें करना पड़ेगा। अगर वो इम्पोर्टेंट चीज अगर मिस हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। अगर ये इम्पोर्टेंट चीज को अगर थोड़ी कमजोरी से करेंगे तो क्या, ऐसे देखो वो भक्त भी कहाँ आगे बढ़ रहा है, वो भक्त भी कहाँ आगे बढ़ रहा है, अगर मैंने 2-4 दिन बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो प्रगति नहीं कर रहा है तो प्रभु पहले उसको समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहा। लेकिन कृष्ण भक्ति हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो गंभीर किसको बनना पड़ेगा, हमको बनना पड़ेगा, दूसरा बनेगा तो हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें माला का जब ध्यान से करना चाहिए, बड़े ध्यान से, और देखिए फिर भगवान देखिए ना कि ये प्रार्थना करते 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 विह्वल हो जाता है, वो बड़ी गहराई से प्रार्थना कर रहा है, उसके आँख में से पानी आने लगता है, जैसे बच्चे माँ को बुलाते हैं ऐसे पानी आने लगता है। वो देखेंगे ऐसा तीव्र भाव से प्रार्थना करता है, माला का जब करता है, तो क्या होगा, भगवान विवश हो जाएंगे, ठीक है इसको कृपा करना पड़ेगा। ये तो क्या होगा, योग्यता विचार किचू नहीं पाई, कांदिया कांदिया बोल दैट, करुणा ना हो ले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी हो, क्या अर्थ है इसका,
अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं
रो रो के प्राण छोड़ दूंगा।
हाँ ऐसे भगवान जैसे गुरु को ये प्रार्थना करते, गुरु को ये प्रार्थना करते आध्यात्मिक गुरु को, कि अगर आपकी करुणा मुझ पर नहीं हुई, अगर आपकी कृपा नहीं हुई मुझ पर, तो मैं ऐसा नहीं कि ठीक है अभी अब नहीं करना है तो ठीक है आपका विचार कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हो कोई बात नहीं, आप गुरु हो मैं शिष्य हूँ, मत करो कृपा चलेगा, नहीं ऐसा नहीं, करुणा ना होले कांदिया कांदिया अगर करुणा नहीं होगी तो रो रो कर मैं प्राण त्याग कर दूंगा, राइट, रो रो कर मैं प्राण त्याग कर दूंगा, ऐसा सीधा खुला धमकी, यू नो, ऐसा किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, है ना, क्या कहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने,
आप मुझे दीक्षा नहीं लो दोगे तो मैं यहाँ गंगा में,
हाँ ऐसा नहीं बोला कि गुरु कौरकृष्ण बाबा ने कहा कि मैं दीक्षा किसी को देता ही नहीं, गुड बाय जाओ, तो भक्तिनाथ सरस्वती महाराज सीधा जाके भक्तिनाथ ठाकुर को, ऐसा नहीं कहा क्या करूँ पिताजी वो दीक्षा नहीं देते किसी को, और कोई गुरु नहीं है लिस्ट में और बता दो तो दीक्षा नहीं देते मुझे क्या करूँ, ये ऐसे ऐसे शिष्य को यू नो दीक्षा देने लायक भी नहीं है। तो भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि यू नो कहा कि नहीं आप करुणा नहीं करोगे तो मैं बोलोगे प्राण त्याग कर, तो कैसी भावना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस जीवन काल में क्या इसी लाइफ में क्या इसी 2014 अभी भी 6 दिन बाकी 7 दिन बाकी है, इस 6-7 दिन में मैं गुरु जी का कृष्ण का कृपा प्राप्त कर लूँगा अवश्य, ऐसा निश्चय होना चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माला का जप ध्यान से करना पड़ेगा, माला का जप ध्यान से, इधर उधर की बातें छोड़ो, बहुत कर ली इधर उधर की बातें, बहुत सोच लिया इधर इसका क्या उसका क्या, सरल करिया मन, गाओ गाओ पुनः गौरांगिर गुना सरल करिया मन, मन को सरल बना दो, डुप्लीसिटी से भाग जाओ हट जाओ, और मन को सरल बना करके स्वच्छ भाव से माला का जप करो, देखो फिर क्या परिणाम आता है, आगे तो बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आगे तो बढ़ना है भक्ति में, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये उपाय है, माला का जप ध्यान से करना है, और जीवन का लक्ष्य बनाओ, यू नो कई बार तो हम भक्तों कहते हैं शॉर्ट टर्म लक्ष्य बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल ऐसे बनाओ कि आने वाले 1-2 साल में आपको क्या करना है, यू नो आपको क्या आगे करना है, वो लक्ष्य बनाओ, ऐसे थोड़ी चलती है गाड़ी चलने दो, यू नो पता ही नहीं कब आके कब यू नो सोलामाला शुरू हो गई, कब हरिनाम दीक्षा हो गई प्रभु जी पता ही नहीं पड़ा, कब ब्राह्मण दीक्षा हो गई प्रभु जी, अब संन्यास तक पहुँच गए पता ही नहीं पड़ा, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या प्राप्त करना है, फोकस होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, गुरु को प्रसन्न करना है, और मेरा अपना जैसे एक समझ लीजिए कि अगर आप भगवान को या गुरु को या वैष्णव को धोखा दोगे, उनके सामने झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, कोई बचेगा नहीं, आप देखो आप कितना भी ट्राई करके देखना कर लो, यू नो अब आपको प्रभु जी कहाँ पता पड़ेगा अगर मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है मत बताओ, देखना छुपे वो छुपा नहीं रहेगा, बस पता पड़ ही जाएगा, यू कैन नॉट हाइड इट, गुरु कृष्ण और वैष्णव के सामने आप छुपा नहीं सकते बात को, आज नहीं तो कल पता तो पड़ने ही वाला है, तो फिर छुपा जो झूठ बोलने वाला काम है वो नहीं करना, कम से कम आपके यू नो आध्यात्मिक गुरु भगवान के सामने ऐसे भी क्या करो ये झूठ बोल गए, मूर्ख हंसे हंसेंगे लोग आप पर, भगवान के सामने गुरु के सामने और जो आपका जो जिस वैष्णव से आप गाइडेंस ले रहे हो उनके पास से उनके सामने झूठ नहीं बोलना, स्वच्छ डॉक्टर के पास जाके झूठ बोलोगे तो क्या होगा, है ना, आप डॉक्टर के पास जाओ आप डॉक्टर बोले कहाँ यहाँ दर्द तो ना ना यहाँ थोड़ी होता है नहीं होता है मुझे दर्द ही नहीं होता, उसको बोले क्या तो आपकी समस्या क्या है ना, समस्या है ही नहीं कुछ, आप कोई भी दवाई दे दो हेडेक का दवाई दे बस हो जाएगा, तो डॉक्टर के सामने झूठ बोलोगे तो क्या होगा, आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपको ठीक होना है नहीं होना है ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है ना, तो इसलिए भक्तों के सामने गुरु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हम किसी इंडिविजुअल भक्त को नहीं कह रहे, ये यूनिवर्सल बता रहे हैं हम, ये इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि हमें एक शुद्ध हृदय चाहिए, किसके लिए, जहाँ पर भगवान विराजमान हो सके, ऐसा शुद्ध हृदय चाहिए, और शुद्ध हृदय आएगा होली नेम माला का जप के द्वारा, तो ऐसे माला का जप ध्यान से करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो आपका मन स्थिर होगा, फिर आप कृष्ण के प्रेम को समझ पाओगे, और भगवान विष्णु ने आके क्या किया वहाँ पर गजेंद्र मोक्ष में, क्या किया, गजेंद्र का उद्धार किया, लेकिन मगर को मार दिया ना, तो ये मगर अगर हम देखें तो ये हमारा भौतिक आकर्षण है एक रूप से, भौतिक आकर्षण है जो इसे पकड़ के रखा है हमारा पांव। अगर जैसे आप हृदय से प्रार्थना करोगे भगवान को, उसके आंख में आंसू भी थे, देखा था आपने, उसके आंखों में आंसू थे, गुजरात के आंखों में आंसू थे और बड़े प्रेम से प्रार्थना कर रहा था, तो आकर्षण क्या कर दिया, सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसको काट दिया। इसको छूना मत, ये ना भगवान बोल देते माया को, इसको छूना मत, ये मेरा 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 यू नो माई डॉग, डोंट टच। सो वी शुड ट्राई टू बिकम लाइक दिस। अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो हम शुद्ध भावनाओं को समझ पाएंगे। अभी क्या है कि दसम स्कंद हम बता रहे हैं आपको, आगे हम कर्मवाद बताएंगे भगवान का, लेकिन हम आपको ये सब इसलिए बता रहे साथ साथ क्योंकि भगवान की लीला को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में स्थिर हो, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास के बिना तो कुछ होता होता है क्या? मिनिमम चीज क्या करनी चाहिए आप भक्तों को भक्ति में स्थिर होने के लिए, मिनिमम क्या है? और मिनिमम साधना क्या होती होनी चाहिए? चार नियम का पालन होना चाहिए ना, चाय कॉफी प्याज लहसुन। भगवान नहीं खाते तो हमें क्यों खाना है, क्यों खाना है ना? क्या आप भगवान नहीं खाते? ठीक है भगवान को नहीं खाते, हमने थोड़ी बोला उनको डाइट वगैरह डॉक्टर मना किया, व्हाट कैन वी डू यू नो, हमने थोड़ी भगवान को मना किया नहीं खाओ, भगवान नहीं खाते ठीक है, भगवान नहीं खाते लेकिन हम खाएंगे तो हम क्या प्रेम करते भगवान को? समझ लो कि आपका पति आपका पत्नी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कुछ चीज़ों को नहीं खाता है, कुछ चीज़ उसको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको वो चीज़ करते हो क्यों उसको पसंद नहीं है, तो कौन सा प्रेम है आपके साथ आपके बीच में, कौन सा प्रेम है? वो प्रेम है क्या? नहीं है। तो भगवान को प्रेम करने वाले व्यक्ति भगवान जो नहीं खाते उसको नहीं खाते। और क्या माला का जब और क्या और कुछ चार नियम का पालन और कुछ गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु के पास गुरु के आदेश का पालन, लेकिन आपको पता है गुरु ने आपको क्या आदेश दिया? वो तो पूछना भूल गए। तो जाओ गुरु के पास और गुरु के पास के जाके पूछो कि गुरु जी मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या सेवा करना चाहिए, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊँ, कैसे आगे बढ़ पाऊँ, ऐसे पूछो। अगर नहीं पूछा तो पूछो, लिखो, पत्र लिखो, अगर आप यू नो गुरु आपके करीब नहीं तो पत्र लिखो गुरु जी को, पूछो, आस गुरु जी आपको कहेंगे, आदेश देंगे। तो गुरु का आदेश का पालन और कुछ भगवत गीता और श्रीमद भागवतम को पढ़ना चाहिए रोज, क्योंकि ये पुस्तक लाइब्रेरी के लिए नहीं बने है ना, ऐसे बनाने के लिए रखने के लिए नहीं बने ऐसे। प्रभुपाद ने रात को 1-2 बजे तक जग जग के क्या ये सोच के ऐसा सोच के आके अगर पूछे स्वामी जी आप ये ट्रांसलेशन जो, बोले मैंने मेरा इच्छा की लाइब्रेरी में सो पूरा डेकोरेट करो, आप दिखाओ कि भक्तिविदान स्वामी ने कितनी पुस्तकें लिखी है। इसके लिए लिखा क्या प्रभुपाद जी ने? किसके लिए लिखा? ताकि हम उसका उपयोग कर सके, उसको पढ़ सके। ऐसे तो लोग बोलते हैं हाँ काश हम प्रभुपाद के साथ होते, भाई प्रभुपाद ने लिखा है वो तो पढ़ प्रभुपाद के साथ होते बड़े आए प्रभुपाद के साथ हमें प्रभुपाद ने जो बताया है उनको मिलने के बाद जो बताने वाला है वही चीज उन्होंने ग्रंथ में बताया है भागवतम में बताया है, तो उसको पढ़ो, वही प्रभुपाद के साथ होना हो गया प्रभुपाद से दीक्षा लेना है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का आदेश इसमें से पढ़ो और सुनो और समझो और फिर भक्ति में आगे बढ़ो, दैट वे यू कैन प्रोग्रेस। हरे कृष्ण, स्टॉप हियर, देयर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो।
क्योंकि आपने बोला कि माया हमको रोकती है जाते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो माया ऐसे भगवान की सेवा कर रही है और भगवान की सेवा में अगर वो रिजल्ट में कोई आगे आ जाता है मीन्स पास होता है तो माया खुश होनी चाहिए ना कि ही इज गोइंग बैक टू माय स्वामी, स्वामी के पास वापिस जा रहा है।
लेकिन उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला गया है स्वामी से कि इसका पूरी तरह से टेस्ट किया जाए, इसको चकास किया जाए, इसको पहले चेक करो कि वो सही में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है मेरे पास। तो उसके लिए कुछ ड्रामा करना पड़े तो ड्रामा भी कर लो, तो माया को ड्रामा करना पड़ता है। यू नो माया ऐसे आएगी हाथ जोड़ के यू नो अप्सराओं को भेजेगी, यू नो कहेंगे हाँ ये चलो हम आपको सामने नर्तन करते 10 मिनट आधे घंटे का शो बैठो इधर यू नो सब कुछ भी कर सकते दे कैन डू एनीथिंग। तो इसलिए माया देवी ऐसा प्रयास करती है कि आप एक बार भगवत धाम जाने के बाद फिर से इधर आकर्षित ना हो। इसलिए अगर आकर्षण थोड़ा भी है आपको लगता है कि नहीं कुछ लोग तो है अच्छे यहाँ पर रहने जैसा है इस देश में शांति है। अभी मैं कुछ समय पहले पढ़ा क्रिसमस मनाना है पेशावर में क्या मनाएंगे डेनमार्क चले जाओ एकदम पीसफुल एकदम पीसफुल किसी ने मुझे कहा कि स्विट्जरलैंड वेरी पीसफुल। हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं संसार में कोई अच्छी जगह है जहाँ पर शांति है सुख है समृद्ध है तब इधर ही रहो आपको भगवत धाम जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है कि नहीं कुछ लोग है सुंदर ऐसा नहीं कुछ सुंदर नहीं है कुछ लोग सुंदर है हाँ भगवान हाँ भगवान भी सुंदर है लेकिन कुछ और भी सुंदर है ठीक है तब आप समझे नहीं हो आप रहो इधर। जब आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि ये क्या है दुखालयम है और शाश्वत आपको पूरा यकीन हो जाए तब आप भगवत धाम जाओ। और कोई प्रश्न
ये ऑनियन गार्लिक भी भगवान ने बनाया तो फिर कुछ लोग
ऐसा नहीं तो बहुत कुछ बनाया
हाँ, कुछ लोग पूछ सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं खाते कुछ लोग खाते हैं कुछ आप लोग क्यों नहीं खाते एंड ये भगवान भी कुछ क्यों नहीं लेते
हाँ, वो तमोगुण है गार्लिक और ऑनियन जो है वो तमोगुण है
भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ भी नहीं तो
लेकिन भगवान सत्वगुण है ना भगवान शराब नहीं पीते क्योंकि भगवान सत्वगुण है शुद्ध सत्व है विशुद्ध सत्व है भगवान तीन गुणों से पर है जो तीनों गुणों से जो सबसे अच्छा गुण है वो भगवान
शुद्ध
वो विशुद्ध सत्व उसमें भगवान रहते आप जो गार्लिक है ना गार्लिक क्या बोलते हैं लहसुन लहसुन मैं किसी ने मुझे बताया कि आप उसको डायरेक्ट डाल के देखो मुंह में नहीं खा सकते आप यू कैन नॉट ईट यू हैव टू डू समथिंग विद दैट इट इज़ नॉट फॉर अस ये हमारे लिए है ही नहीं लहसुन तो प्याज और लहसुन खाने से क्या होता है एक तो हमारी इंद्रियां प्रबल होती है सबसे पहली बात प्रबल होती है प्याज और लहसुन खाने से हमारी इंद्रियों में ऐसी शक्ति आती है कि वो डिमांड करती है भोग लाओ भोग लाओ यू नो आंखें कहेगी देखना लाओ कान कहेगी सुनना लाओ स्पर्श कहेगा यू नो इंद्रिय भोग लाओ ऐसे भोग का डिमांड बढ़ेगा तो ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो मन को वश में करने के लिए जब आपकी इंद्रियां और प्रबल हो जाएगी तो आपका मन तो सो जाएगा थोड़ी देर पाप करेगा तब तक मन आराम से बिस्तर लेकर सो जाएगा उसको कुछ नहीं फर्क पड़े तो एक तो सबसे पहले इंद्रियां प्रबल होती है दूसरा आपका प्रबल इंद्रियां जब संतुष्ट नहीं होती ना तो क्या होता है क्रोध होता है क्योंकि जितनी मात्रा में इंद्रियां प्रबल होती है उतनी मात्रा में क्रोध भी जन्म लेता है क्योंकि संतुष्ट नहीं होती कहाँ इंद्रियां तो प्रबल कुछ भी बोले ये सब कुछ मिलना जरूरी नहीं है फिर वो होता है जब रेप होगा फिर लूटपाट होगा या क्राइम्स होगा क्यों होगा क्योंकि लोग इंद्रियों को प्रबल बना रहे तमोगुणी खा के इसका अर्थ ये नहीं किया प्रभु क्या आप ये कहना चाहते हो कि क्राइम रेशियो जो बढ़ रहा है वो प्याज लहसुन के कारण नहीं इट्स नॉट दैट प्याज लहसुन खाने से नहीं लेकिन प्याज लहसुन उसमें शामिल है जो तमोगुणी आहार है जिसमें मांस मांस है नॉन वेज है ये सब तमोगुणी आहार है इससे इंद्रियां प्रबल होती है और ये प्याज लहसुन भी उसका एक अंश है और आयुर्वेद हम नहीं कहते आयुर्वेद खोल के देख लो मेडिकल मेडिकल बुक आयुर्वेद आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि ये तमोगुण आहार है ये आपकी तमोवृत्ति है बढ़ाती है अज्ञान बढ़ाता है इसलिए हम नहीं खाते ये रीज़न है प्रॉपर रीज़न लेकिन भक्तों के लिए एक ही रीज़न काफ़ी है भक्तों के लिए केवल एक ही रीज़न काफ़ी है क्या भगवान नहीं खाते इसलिए मैं नहीं खाता सिंपल एक ही रीज़न काफ़ी है भक्तों के लिए भगवान नहीं खाता मैं नहीं खाऊंगा ख़त्म आज भगवान ने अगर भगवान कहेंगे आज कल से मैं रोटी नहीं खाऊंगा ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगा अब भगवान ने बोल दिया रोटी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा सिंपल भगवान के भक्तों के लिए ऐसा है तो इसलिए प्याज लहसुन से बचना चाहिए अगर आप एक दिन में नहीं कर हमने देखा है कि जब प्याज लहसुन के बिना जो प्रसाद बनता है ना वो कई गुना अच्छा स्वादिष्ट होता है प्याज लहसुन के साथ जो बना खाना और हमने कहीं हम भक्तों ने छोड़ दिया है तो क्या हम लोग बीमार हो गए मर गए क्या हाँ क्या हुआ हमें कि हम लोग का खाना, हम लोग यू नो रो रहे हैं कि हाय हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, यू नो रो रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति थे जो नॉनवेज वगैरह सब खाते थे, तो उन्होंने हमने प्रसाद भेजा कि देखो खाइए आप, चखिए। तो बोले ऐसा तो स्वाद हमें कभी नहीं मिलता है, यू नो इतना मसाला डालने के बाद भी। भगवान का प्रसाद है। तो आप क्या चाहते हो, प्रसाद खाना चाहते हो या फिर पाप खाना चाहते हो? प्रसाद खाना चाहते है ना, तो प्याज से मत खाइए। क्या फर्क पड़ता है?
नहीं आज वो तुम्हें ऐसे ही
बस समझता बस
बट एक आज एथिकल भी आया है, वो प्रसाद खाने से बहुत बेटर है।
क्या
एक एनालिसिस हुआ है, उसका एक आर्टिकल भी मेरे को व्हाट्सएप में आया था।
क्या बता रहा है आर्टिकल?
कि जो लोग प्रसाद खाते हैं बहुत खुश रहते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। आर्टिकल
किसने भेजा था ये? ऐसे आर्टिकल किसने भेजा?
पता नहीं, वो पेपर में आया हो, देख के बताओ।
प्रसाद खाने से देखो क्या फायदा होता है, ऐसा आर्टिकल का।
किसी आयुर्वेदिक चीजों में ये मिश्रित होता है।
प्रयास करना चाहिए कि हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ ले, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप यू नो बहुत सीरियस हो और आपको कोई उपाय नहीं है दूसरा, तो आप गुरु की परमिशन लेके या वैष्णव की परमिशन लेके दवाई के रूप में ले सकते हो, लेकिन वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट।
खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं,
इंद्रिय भोग के लिए नहीं। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ले सकते हो ऐसे, कुछ मिला नहीं प्रभु क्या करे, ऐसा वाला नहीं। अच्छा, वेरी गुड। सर्वे किया था इन लोगों ने, सर्वे में ऐसा पता पड़ा कि जो लोग प्रसाद खाते हैं वो ज़्यादा सुखी है,
हेल्दी है,
हेल्दी है ज़्यादा। ये सर्वे किया हुआ है, इट्स वेरी गुड साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च करके देखा कि जो प्रसाद खाते हैं और जो प्रसाद नहीं खाते तो कौन हेल्दी है, तो ये सर्वे हुआ। देखो तो भी प्रसाद खाना चाहिए हमें, है ना, प्रसाद लाओ। और कुछ प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण।